ओम शांति। बहुत सुंदर एक गीत सुना कि निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल, हर एक इंसान इस संसार के अंदर यही चाहता है कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। जीवन में कभी कोई समस्याएं ना आए, जीवन में परिस्थितियां अगर आए तो उसको दूर करने के लिए या उसको पार करने के लिए अथाह शक्ति हमारे पास आए। राजयोग द्वारा ये जीवन जीने की कला आ जाती है। ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं आती, ऐसे नहीं कि समस्याएं नहीं आएगी। जीवन के अंदर ये समस्याओं का आना, परिस्थितियों का आना, ये भी हमें मजबूत बनाता है, ये भी हमें अनुभवी बनाता है कि जिस अनुभव के माध्यम से जीवन जीने की एक समझ आ जाती है, एक कला आ जाती है। बेशर्त हम उस कला को अपने जीवन में सीख ले, उस परिस्थिति से प्राप्त संदेश उसको हम अपने जीवन में समझ ले, तब जाकर के हमारा जीवन बहुत सुंदर अनुभव प्रदान करने वाला बन जाता है। ये संसार चक्र जो चल रहा है, ये संसार चक्र में तीन सत्ताओं का खेल चलता है। पहली सत्ता है आत्म सत्ता, दूसरी सत्ता है परमात्म सत्ता और तीसरी सत्ता है प्रकृति सत्ता। ये खेल है ही इन तीन सत्ताओं के बीच में। तब कहा जाता कि पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति के बीच में ये खेल चलता है और इसमें ये तीनों सत्ताओं का अपना अपना कर्तव्य है। जो कुछ अनादि नियमों में बंधे हुए हैं और उस हिसाब से चल रहे हैं। जब पहले भी हमने सुना कि परमात्मा किसी मनुष्य के कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है, उसने मनुष्य को बुद्धि दे दी और वह स्वतंत्रता भी दी है कि अब वो अपने कर्म के निर्णायक खुद बने कि कौन से कर्म उसको करने हैं और कौन से कर्म उसको नहीं करने हैं। उस अनुसार ही अपने कर्मों का फल वो भोगते हैं। ऐसे ही ये तीनों सत्ता का जो अपना अपना कर्तव्य है, उसमें कई बार कई लोग ये समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है इस दुनिया के अंदर। एक पत्ता हिलता है तो भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। पत्ते पत्ते को हिलाने का कार्य भगवान करता है। अब दुनिया में इतने करोड़ों वृक्ष है और अब जो पत्ते होंगे, परम शक्ति जो ऊंचे से ऊंची हस्ती है, क्या वो पत्ते हिलाने का ही कार्य करते रहेंगे? नहीं, हर एक को अपना अपना कार्य मिला हुआ है और उस कार्य के हिसाब से ही उसको नियम अनुसार चलना होता है। उसमें परमात्मा इंटरफियर नहीं करते हैं। परमात्मा का कर्तव्य अपना है, प्रकृति का कर्तव्य अपना है और आत्माओं का कर्तव्य अपना है, और इसलिए ये तीनों इस संसार चक्र के खेल में अपने अपने कर्तव्य के हिसाब से चलते रहते हैं। उसमें कोई एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं करता, और जब इंटरफियर करने लगते हैं तब विनाश या परिवर्तन निश्चित हो जाता है। तो इसलिए आत्माओं का कर्तव्य क्या है, प्रकृति का कर्तव्य क्या है और परम शक्ति परमेश्वर का कर्तव्य क्या है? ये जरूर कहते हैं कि ये दुनिया को चलाने वाला परमात्मा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर ये हाथ उठा तो भी उसकी मर्जी हुई इसलिए उठा। मान लो ये हाथ उठा और जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहें? भगवान की मर्जी हुई। जो करुणा का सागर, दया का सागर, क्या किसी को थप्पड़ मारने की प्रेरणा दे सकता है? ये कर्तव्य भगवान का नहीं है। तो इसलिए ये स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए कि भगवान का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है और प्रकृति का कर्तव्य क्या है। तीनों का कर्तव्य एक समान है, इसीलिए कभी कभी हम एक दूसरे के कर्तव्य में यही समझ लेते हैं कि ये भी शायद भगवान ने ही किया होगा। तीनों का कर्तव्य अपने अपने स्तर पर है, एक ही है। तीनों तीन कर्तव्य करते हैं। आत्मसत्ता भी तीन कर्तव्य करते हैं, लेकिन अपने स्तर पर। प्रकृति सत्ता भी तीन कर्तव्य करते हैं, लेकिन अपने स्तर पर। और परमात्म सत्ता भी तीन कर्तव्य करते हैं अपने स्तर पर। आत्मसत्ता जो कर्तव्य करते हैं वो भी स्थापना, पालना और विनाश का है। प्रकृति सत्ता भी यही कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश का। और परमेश्वर भी स्थापना, पालना और महाविनाश, ये तीन कर्तव्य कराते हैं। खुद करते नहीं है, अकर्ता है, करण करावनहार है। इसलिए अपने ये तीन कर्तव्य करने के लिए उसने तीन मूर्तियों की रचना की है, कि ब्रह्मा द्वारा नए विश्व की स्थापना का कर्तव्य, विष्णु द्वारा नए विश्व की पालना का कर्तव्य, और जब वो विश्व पुराना हो जाता है, जब परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो शंकर के माध्यम से ये सृष्टि का एक महान परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने वाला मालिक होता है। कहने में यही आता है कि ये कंपनी को ये मालिक चला रहा है, लेकिन कहीं पर अगर कोई दीवार में खील मारनी हो तो मालिक हथौड़ा उठा करके खील नहीं लगाता है। उसके लिए उसके पास वर्कर्स है, हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना कार्य मिला हुआ है कि वो कार्य मेंटेनेंस का ये करेगा, कंस्ट्रक्शन का ये करेगा। इस तरह हर एक को अपना अपना कार्य मिला हुआ है जो करता जाता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी को चलाने वाला वो मालिक है। ठीक इसी प्रकार ये संसार को चलाने वाला परमात्मा है, लेकिन पत्ता हिलाने का काम परमात्मा नहीं करता है। वो कार्य उसने प्रकृति को सौंपा हुआ है। प्रकृति अपने स्तर पर वो कार्य चला रही है। इसी तरह आत्माओं को अपना कार्य मिला हुआ है जो अपने स्तर पर ये तीन कार्य करते हैं। आत्माएं भी जो स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करती है, ये संसार में कई चीजों का सृजन का कार्य आत्माएं करती है। अपनी बुद्धि चलाती है, इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए वो कुछ न कुछ अपनी रचनात्मक बुद्धि लगा करके सृजन का कार्य करते रहते हैं। वही आत्माएं उसकी पालना का कार्य भी करते रहते हैं। और वही इंसान जब हैवान बन जाता है तो अपनी ही स्थापन पालन की हुई चीज का सर्वनाश भी कर सकता है, लेकिन वो अपने स्तर पर जो उसने रची हुई है, उसने पाली हुई है, उसका विनाश करता है। ठीक इसी तरह प्रकृति भी ये तीन कार्य कर रही है, लेकिन अपने स्तर पर। एक वृक्ष के ऊपर से बीज गिरता है जमीन में, वो चला जाता है, बरसात का पानी मिलता है, हवा मिलती है, धूप मिलती है, प्रकृति ही अपने स्तर पर सृजन का कार्य करती है। वो प्रकृति अपने ही तत्व द्वारा पालना का कार्य भी करते हैं। जंगलों में जो वृक्ष आदि उगते हैं उसको पालना कौन करने जाते हैं? कोई इंसान नहीं जाता है, प्रकृति उसकी पालना भी करती है। लेकिन वो प्रकृति को भी जब मनुष्य अपने कर्मों से इंटरफियर करने लग जाता है और इम्बैलेंस कर देता है, तो प्रकृति अपनी ही स्थापन पालन की हुई चीज का विनाश करती है। परमात्मा भी अपने स्तर पर ये तीनों कार्य करते हैं। विश्व के स्तर पर नई सृष्टि की सर्जना का कार्य करते हैं ब्रह्मा द्वारा, वो सृष्टि की पालना का कर्तव्य करते हैं विष्णु द्वारा, और वो सृष्टि के महाविनाश का कार्य, परिवर्तन का कार्य करते हैं शंकर के द्वारा। जब ये सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, तामसी प्रवृत्ति वाली हो जाती है, तब परमात्मा को अपना कार्य करने के लिए ये तीन मूर्तियों की रचना करनी पड़ती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे होती है, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। अब संकल्प से सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, उसके पीछे भी भावार्थ है। शंकर ने आंख खोली और महाविनाश किया, इसका भी भावार्थ है। जब यह सृष्टि तमोप्रधान हो जाती है तो कहते शंकर ने अपनी आंख खोली और इसलिए ये महाविनाश शुरू हो गया। कई जगह हमें झलकियां दिखाई देती है कि परमात्मा जब अपना कार्य करने के लिए शंकर को प्रेरणा देता है, इसीलिए तीसरा नेत्र खुलने की बात है। तीसरा नेत्र यानी ज्ञान के चक्षु। जब आत्माओं के ज्ञान के चक्षु खुलने लगते हैं, तब वो सर्वप्रथम अपने जीवन में रही हुई कमजोरियों का नाश करने लगते हैं। मुझे याद आता है जब ब्रह्मा कुमारीज के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एक बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे और अमेरिका में एक साइंटिस्ट मीट हुई थी। कई वैज्ञानिक वहां आए थे और वो साइंटिस्ट मीट जब हुई तो हर एक ने कई प्रश्न पूछे दादी जी को कि स्पिरिचुअल साइंस क्या है और उसके विषय में समझना चाहते थे। अंत में दादी जी ने उनसे कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या सवाल है? तो उस वक्त दादी जी ने उनको यही प्रश्न पूछा कि आप सबके मन के अंदर कौन सा विचार आता है जो आप ये अणु परमाणु बॉम्ब बनाते हो? कुछ तो विचार आया होगा। तो कौन सा ऐसा विचार आता है आपके मन के अंदर जो आपको लगता है कि ये अणु परमाणु बम बनाए? टोटल साइलेंस हो गई उस सभा में, क्योंकि किसी ने इस बात के ऊपर सोचा ही नहीं था कि ऐसा क्या विचार हमारे मन के अंदर आते। थोड़ी देर साइलेंस के बाद एक साइंटिस्ट ने बहुत सुंदर जवाब दिया और कहा कि जब हम बनाने जाते हैं, एक रिसर्च करते हैं, तब हमारे मन के अंदर विनाश का ख्याल नहीं होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि एटम में इतनी एनर्जी है, इस एनर्जी को कैसे क्रिएटिव पर्पस के लिए यूज किया जाए, कि एक समय आएगा, ये हम सभी महसूस करते हैं कि यह दुनिया के संसाधन खत्म होने वाले हैं, रिसोर्सेस खत्म होंगे, तेल के कुएं कब तक तेल देते रहेंगे, और जब ये तेल के कुएं खत्म हो गए तो क्या ये संसार एक स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा? उस समय के लिए हम सोचते हैं कि ये एटॉमिक एनर्जी है, क्या उसको ईंधन की जगह कहीं यूज नहीं कर सकते? इसलिए ये एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए हम सोचते हैं और इस तरीके से हम अपना रिसर्च शुरू करते हैं कि कैसे जीवन या उसका जीवन चलता रहे, उस रीति से उसका प्रयोग किया जाए। इसलिए जब हमारे मन के अंदर विचार आता है तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव विचार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि कोई हमारी बुद्धि को प्रेरित कर रहा है और उसके हिसाब से वो रिसर्च में आगे बढ़ते जाते हैं, और जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो कोई शस्त्र बन जाता है कि वो डिस्ट्रक्टिव कार्य कर सकता है, ऐसा हमारे सामने वो प्रोडक्ट बन जाता है। बनने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बनाने जाते हैं कुछ और, बन जाता है कुछ और, तब महसूस होता है कि कोई हमारी बुद्धि को प्रेरित कर रहा है कि ये संसार का परिवर्तन या विनाश का कार्य करने के लिए ये प्रेरणा देने वाला कौन। इसलिए कहा जब शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो वो ऐसे मनुष्य को निमित्त बनाता है कि जो ये संसार के महाविनाश के लिए निमित्त बन जाता है। करण करावन हर परमात्मा है, क्योंकि प्रकृति और सारा संसार इतना इम्बैलेंस हो चुका है कि अब इस स्थिति में आगे चल नहीं सकता है, इसलिए शंकर को ये कार्य मिला हुआ है कि वो बैठ करके अपना प्रेरणा के द्वारा अपना कार्य कराता है। इंसान कोई संकल्प देता जाता है और उस रीति से वो कार्य हो रहा है, यानी महाविनाश की तैयारियां कराने वाला कौन? शंकर के माध्यम से करण करावनहार परमात्मा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये परिवर्तन की प्रक्रिया भी बहुत सुनिश्चित है, क्योंकि ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। इसी तरह ये संसार में ब्रह्मा द्वारा संकल्प से सृष्टि को रचा, परमात्मा ने जब ये विनाश की तैयारियां आरंभ कराई शंकर को प्रेरणा देकर के, और शंकर ने ये संसार के मनुष्य को प्रेरणा देकर के, उसी वक्त परमात्मा ने अपना दूसरा कार्य ब्रह्मा के द्वारा ही आरंभ कर दिया। ब्रह्मा के द्वारा कैसे ये कार्य को आरंभ किया, तो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य उनको पहचान नहीं सकते हैं, और परमात्मा अपना कार्य करने के लिए किसी मनुष्य को निमित्त बनाते हैं, वो संकल्प देते हैं। संकल्प स्थापना का संकल्प कि नए विश्व की स्थापना की नींव कैसे रहेगी और कैसे ये कार्य आरंभ होगा और सारे सृष्टि के अंदर ये परिवर्तन की योजना किस तरह चलेगी, ये ब्रह्मा के द्वारा कराया। और इस तरह से ब्रह्मा को सबसे पहले संकल्प दिया। कई लोगों ने हमें ये भी प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई और उसको ब्रह्मा नाम क्यों दिया गया है। वास्तव में देखा जाए उनका लौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा नहीं था, उनका नाम था दादा लेखराज। और दादा लेखराज एक बिजनेसमैन थे, हीरे जवाहरत का व्यापार करते थे, परंतु उनके जीवन में सात्विकता बहुत थी। और ये सात्विकता इस हद तक थी कि हर रोज गीता का पाठ जरूर पढ़ते थे, और वो पाठ पढ़ने के बाद ही अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। काफी भक्ति की, और खूब भक्ति करने के बाद जीवन में कुछ अच्छे संस्कार तो थे ही थे, क्योंकि उनके पिताजी हेडमास्टर थे, और उस जमाने के जो हेडमास्टर होते थे कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स वाले होते थे। तो उस कारण से दादा लेखराज के जीवन में भी मूल्यों का सिंचन बचपन से ही हुआ था, और फिर भक्ति में खूब ओतप्रोत रहते थे। हर रोज गीता का पाठ अवश्य करना और दुनिया अपनी जीवन निर्वाह अर्थ कर्म करना, लेकिन सही में कर्म योगी जीवन जो गीता के ज्ञान से उन्होंने समझा था उस हिसाब से बिताते थे। गीता के प्रति श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बिना गीता के पाठ किए कोई भी क्लाइंट भी क्यों ना आया हो, लेकिन फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते थे। पहले धर्म और फिर कर्म। जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए थे, और हर एक गुरु से कोई न कोई ऐसा विचित्र अनुभव था। एक बार गुरु जी ने उनके घर में कोई नामकरण विधि थी बच्चे की, काफी मेहमान घर में आए हुए थे, और सारा फंक्शन चल रहा था कि अचानक गुरु का टेलीग्राम आया कि मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है। जैसे ही गुरु का तार आया उसने सबको कह दिया मुझे अभी निकलना होगा। सारे परिवार वालों ने कहा आज विशेष फंक्शन है, ये फंक्शन पूरा हो जाने दो, उसके बाद आप जाइए। उस समय उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, अगर काल आ जाए तो क्या हम काल से ये कहेंगे कि भाई हमारे घर में फंक्शन चल रहा है इसलिए आप कल आना या फंक्शन पूरा होने के बाद आना। इस तरह गुरु के आज्ञा को पालन करते थे और तुरंत रवाना हुए। जैसे ही गुरु के पास पहुंचे, गुरु ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। अब 1936 के पहले की ये बातें सुना रही हूं। आज के 10,000 कोई इतना वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन उस जमाने के 10,000 बहुत बड़ी कीमत रखता है। जब गुरु ने कहा, आज्ञा सिरमा थे, बिना सवाल किए उन्होंने 10,000 रुपया दे दिए। फिर गुरु को ही ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बताना जरूरी है कि मैंने ये 10,000 क्यों लिया। तब गुरु ने कहा कि मैंने ये 10,000 रुपया इसलिए मांगा कि मेरा एक शिष्य सट्टे में हार गया है, उसकी इज्जत बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे ये 10,000 रुपए की आवश्यकता थी। फिर पिताश्री ब्रह्मा बाबा को लगा कि अगर गुरु एक शिष्य की इज्जत बचाने में उसको साथ दे रहे हैं, उसको सट्टे के बिजनेस से छुड़ा नहीं सकता है, तो वो हमारी गति सदगति कैसे करेगा। इस तरह से जब विचित्र अनुभव होते थे तो कोई और ऊंचे गुरु की तलाश में वो चले जाते थे। और इस तरह जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए। भक्ति खूब करते रहे, हीरे जवाहरत के बिजनेस के कारण दादा लेखराज का बिजनेस 3 स्थानों पर चलता था, सिंध हैदराबाद में, कलकत्ता में और बॉम्बे में। ये 3 स्थानों पर उनका ये हीरे जवाहरत का बिजनेस चलता था। उस जमाने में करोड़पति थे, धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो बिजनेस था वो भी राजा महाराजाओं के साथ में था। उदयपुर के राजा, नेपाल के राजा, वहां तक कि क्वीन विक्टोरिया के साथ भी, उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था तो क्वीन विक्टोरिया के साथ भी उनका बिजनेस चलता था और बिजनेस के कारोबार से आना जाना पड़ता था। लेकिन बिजनेस के अंदर ईमानदारी और सच्चाई उनके कॉन्टैक्ट्स को न सिर्फ बिजनेस के तरीके से बढ़ाते थे, लेकिन वहां तक कि ये राजा महाराजाओं का भी एक विश्वास उन्होंने जीत लिया था। उनके साथ उठना बैठना उनका होता था, इस प्रकार का एक सम्मानित जीवन जीते थे। लेकिन जैसे कहा कि हर रोज गीता का पाठ अवश्य करते थे। एक दिन बॉम्बे आए थे और बॉम्बे उनका जो मकान था वो बबुलनाथ मंदिर के सामने था। हर रोज भक्ति तो करनी ही है, गीता का पाठ तो पढ़ना ही है। बबुलनाथ मंदिर से एक पंडित जी आते थे उनके भवन में और गीता का पाठ सुनाते थे। जैसे गीता का पाठ चल रहा था कि पता नहीं उन्हें क्या ऐसा महसूस हुआ, जो पहली बार जीवन में उठ करके अपने कमरे में चले गए। उनके बड़े बेटे की बहू वहां थी। जब उन्होंने ये देखा तो उनके मन में विचार आया कि पिताश्री जी कभी नहीं जाते हैं और सत्संग छोड़ के तो कभी नहीं उठते हैं बीच में से, इतने नियम के पक्के हैं, फिर आज ये उठ करके कहां जा रहे हैं। सोचा शायद तबीयत ठीक न हो, पूछती हूं जाकर के क्या हो रहा है। ये सोच करके वह भी उठे और पिताश्री जी के कमरे में गए। कमरे में गए तो देखा कि पद्मासन लगाकर अर्ध पद्मासन लगाकर के पिताश्री जी ध्यान मग्न थे, बहुत दीप ध्यान में जैसे समाये हुए थे, आंखें बंद थी। धीरे धीरे आंखें खुलने लगी और आंखों से इतना प्रकाश सारे रूम के अंदर जैसे प्रकाश को फैला रहा था और ये प्रकाश इतना पावरफुल था कि आकर के जैसे थोड़े समय के लिए आंखें खोली और तीन महावाक्य उच्चारण किए। उसी ध्यान अवस्था में ही थे ये तीन महावाक्य जो उच्चारण हुए, निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये तीन महावाक्य उच्चारने के बाद वो प्रकाश चला गया। पिताश्री जी अपने साधारण स्वरूप में आए और आते ही पहला सवाल यही था, कहां गई वो लाइट, कहां गई वो लाइट। वो बड़े बेटे की बहू ये सारा दृश्य देख रही थी। उन्होंने पूछा, आप कहां थे? तब उन्होंने अपने अनुभव में ये बात सुनाई कि पता नहीं कोई शक्ति मुझे खींच रही थी। मैं सत्संग से भी कैसे उठकर आ गया पता नहीं चला, और कोई शक्ति मुझे खींच रही थी और बहुत सुंदर एक लाइट देखी, और वो तेजोमय लाइट ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे तरफ आ रही है। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर उसने अधिकार प्राप्त किया और कुछ बोल के गई। क्या बोल के गई मुझे पता नहीं। तब उसके बड़े बेटे की बहू ने ये तीन वाक्य सुनाए कि ये तीन वाक्य हमने सुने, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये था परमात्मा का पहला परकाया प्रवेश, जिसमें उन्होंने अपना परिचय खुद दिया कि मैं कौन हूं। मैं निजानंद स्वरूपम, मेरा स्वरूप निजानंद स्वरूप है, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, प्रकाश स्वरूपम, प्रकाश स्वरूप है मेरा, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, और ज्ञान स्वरूप है मेरा, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। ये अपना परिचय स्वयं दिया और उसके बाद वो लाइट चली गई। सारा कमरा लाइट हो गया था, जैसे एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज, इतना पावरफुल तेज था जो वो बड़े बेटे की बहू ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद जब पिताश्री जी ने ये सोचा, ये कौन थी वो लाइट और वो क्या कहना चाहती है मुझे, क्या कराना चाहती है मुझसे, कुछ भी स्पष्ट नहीं। तब उन्होंने एक पत्र लिखा अपने 12वें गुरु को। उनके मन में यही था कि ये गुरु की कृपा है जिस कारण मुझे ऐसा सुंदर दर्शन हुए और ये सुंदर अनुभव हुआ। बहुत एलिवेटिंग एक्सपीरियंस था उनके लिए, जो शब्दों में बस इतना ही बयान कर पाए। लेकिन जब 12वें गुरु को पत्र लिखा कि आपकी कृपा से मुझे ये दिव्य अनुभव प्राप्त हुए और कृपा करके आप मुझे ये समझाइए कि ये संदेश क्या है और ईश्वर क्या चाहता है, जब ये पत्र गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने जब उसको पढ़ा, बड़ा आश्चर्य लगा उन्हें भी, और उन्होंने रिटर्न में जो जवाब दिया वो इस प्रकार था कि ये मेरी कृपा से नहीं हुआ है, ये कोई ईश्वरीय इच्छा, अलौकिक इच्छा परमात्मा की है जिसने आपको ये दर्शन भी दिए, ये महावाक्य भी उच्चारे, और अब तो परमात्मा ही जाने कि वो क्या चाहता है और उसकी प्रेरणा क्या है। ये मेरी कृपा से नहीं हुआ है, क्योंकि आज दिन तक मुझे ही कोई रूप से परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। ये जब स्पष्ट किया तब पिताश्री जी को लगा फिर वो कौन है, कौन है वो। और वो खोज के उसमें, वो विचारों में कुछ दिन चलते रहे। कुछ दिन के बाद वहां से बनारस गए, सोचा थोड़े दिन गंगा तट पर रहेंगे, कुछ महान ऋषियों से अगर मिलने का सौभाग्य हुआ उनसे ये प्रश्न पूछूंगा। बनारस जाकर के उनके मित्र के यहां रहे, उनका मित्र बनारस में रहते थे, तो थोड़े दिन जाकर के वहां रहे। हर रोज गंगा तट पर जाते थे, बैठते थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे थे इन्हीं विचारों में कि वो शक्ति कौन है, और ऐसा वैराग जैसा मन के अंदर आ रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एक दिव्य खींच जैसे अंदर में बुद्धि को खींच रही है अपने तरफ। इसलिए जैसे ही शाम का समय था, एक दिन शाम को 5:30 बजे गंगा तट पर बैठे थे, इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि अचानक फिर से ध्यान मग्न हो गए, ट्रांस में चले गए, और उस वक्त उन्हें साक्षात्कार हुए। और साक्षात्कार हुआ ये पुरानी सृष्टि के महाविनाश का। दूसरा दृश्य जो देखा कि कैसे प्रकृति टोटल इम्बैलेंस हो रही है, और उस इम्बैलेंस के कारण किस प्रकार नेचुरल कैलेमिटीज, कुदरती आपदाएं आ रही है। कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रही है, माना इस प्रकार के दृश्य थे जो उसमें लाखों लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प करके मर रहे हैं, यह दृश्य उन्होंने देखा। उसके बाद तीसरा दृश्य देखा कि कैसे अणु शक्ति के माध्यम से, अब ये दृश्य जब देखा तब 1936 के पहले की बात मैं कर रही हूं, कि जिस समय अणु शक्ति का ज्ञान भी संसार में नहीं था, लेकिन उस वक्त उन्होंने देखा कि कैसे ये संसार पर छोटी छोटी आग जैसे गिर रही है, और जैसे इस संसार में गिरती है जैसे बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और उस विस्फोट में कई लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, ये दृश्य देखा। ये दृश्य ऐसा कंपाने वाला था कि एकदम जैसे उस ट्रांस की अवस्था में ही कांप गए, और एकदम आंखों में से जैसे आंसू निकल रहे हो और कह रहे हैं बस करो प्रभु, ये दृश्य मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये दृश्य मैं नहीं देख पा रहा हूं। अब क्या हुआ था कि जब काफी देर हो गई थी, क्योंकि 5 बजे से निकले थे, रात को 8-9 बजने को आए थे, फिर भी जब लौटे नहीं थे, तो मित्र ने सोचा कि अभी तक कहां चले गए, देखे तो सही, तो नौकर को भेजा कि आप जाकर के ढूंढो और उनको बुला करके ले आओ। तो जब नौकर ढूंढने गया था तब देखा कि वो जैसे रो रहे हैं और यही कह रहे हैं बस करो प्रभु, मैं नहीं देख सकता हूं ये दृश्य, मुझे आपका मोहिनी स्वरूप दिखाओ। उसके बाद ऐसा दृश्य देखा कि कैसे ये सारा संसार परिवर्तन हो रहा है और पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे की ओर आती है, कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण करती है और एक ऐसी दैवी सृष्टि की सर्जना हो जाती है। बहुत सुंदर रासलीला का एक दृश्य देखा और उसके बाद एक आवाज सुनाई दिया कि निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश होने वाला है और उसके बाद ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी जो तुम्हें बनानी है, तुम्हें बनानी है, तुम्हें बनानी है। और उसके बाद वो आवाज भी चला गया, वो दृश्य भी चला गया। तब पिताश्री जी एकदम मूंझ गए, ऐसी दुनिया मैं कैसे बना सकता हूं? और इतना बड़ा महाविनाश, ये भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? तब वे नौकर ने कहा आपको बुलाया है, वहां से उठकर चले। उन्होंने ये सारी घटना अपने मित्र को सुनाई कि कुछ दिनों से ऐसे विचित्र अनुभव हो रहे हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे ये सब, ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो विनाश का दृश्य देखा था उसके कारण उनके जीवन में एक वैराग आ गया कि ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है, ये सब दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ऐसा वैराग, ऐसी विरक्ति आ गई संसार के तरफ से। और फिर ये अनुभव के बाद वो गए कलकत्ता, कलकत्ता जहां उनका बिजनेस चलता था, पार्टनर वो बिजनेस को संभालते थे। तब उन्होंने जाकर के पार्टनर से कहा कि ये बिजनेस को मैं समेट लेना चाहता हूं। पार्टनर को बहुत आश्चर्य हुआ, जब बिजनेस क्लाइमेक्स पर आ गया है और इस वक्त आप ये कहते हैं, इस वक्त तो चारों ओर आपका नाम है। कहा मुझे ये हीरा हीरा नहीं लग रहा है, पत्थर लग रहे हैं। क्योंकि जो सतयुग का दृश्य देखा था उन्होंने, वो नई सृष्टि का दृश्य देखा था, वो जैसे हीरे जवाहरत के महल देखे थे, उसकी चमक दमक जो देखी थी, तो कहा उसके आगे तो ये सब पत्थर ही लग रहा है मुझे। तब वो पार्टनर को लगा पता नहीं क्या हो गया और ये बिजनेस को बंद करने की क्यों सोच रहे हैं। काफी समझाने का प्रयत्न किया लेकिन पिताश्री जी ने कहा नहीं, ऐसा लगता है कि भगवान कुछ और कराना चाहते हैं। अब मुझे ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तब जब पार्टनर ने देखा कि अब बिल्कुल ही उनका मन उठ गया है, इतना वैराग आ गया है, कहा ठीक है, जो हिसाब के रूप में करेंगे हम। पहले तो उन्होंने ये भी समझाना चाहा कि पिताश्री जी, भले अगर आप बिजनेस से अलग भी हो जाओ, नहीं भी करना चाहो, लेकिन सिर्फ आपका नाम रहे, आपके नाम से ही इतने बिजनेस में तरक्की हो रही है। कहा नहीं, मुझे अपना नाम भी नहीं चाहिए। कहा उसका भी हम आधा आधा करेंगे। कहा ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तब जाकर के पार्टनर ने सोचा अब इनका मन उठ गया है, और इसलिए जब उन्होंने वकील को बुला करके सारा बिजनेस को समेटना आरंभ किया, जैसे ही बिजनेस को समेट रहे थे कि अचानक हैदराबाद सिंध से एक टेलीग्राम आया कि उनके चाचा बहुत बीमार हैं और उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए इनकी इच्छा है कि वो दादा से मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक हीरे जवाहरत के व्यापारी थे, करोड़ों पति थे उस जमाने में, इतनी सारी संपत्ति छोड़ के जाने वाले थे क्योंकि वो बहुत बीमार थे, सीरियस थे, तो उनको लगा कहीं ये सारी प्रॉपर्टी अस्त व्यस्त न हो जाए, इसलिए ये सारा दादा लेखराज को मैं सौंप करके, क्योंकि उसके जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, इसलिए एक टेलीग्राम भेजा। उसने सारा कारोबार पार्टनर के ऊपर छोड़ दिया और वहां से हैदराबाद सिंध में आए, लेकिन पहुंचे उसके पहले चाचा ने शरीर छोड़ दिया था। बॉडी रखी हुई थी, पिताश्री जाकर के बॉडी के पास बैठे और उस बॉडी की ओर देख रहे थे, तब फिर ध्यान मग्न हो गए और आत्मा का साक्षात्कार हुआ और चाचा की अंतिम स्थिति उन्हें दिखाई दी उस साक्षात्कार में, कि आत्मा कैसे भ्रुकुटी में निवास करती है, एक चैतन्य शक्ति है, और शरीर छोड़ने से पहले वो पैरों के अंगूठे तक जाती है और एक एक इंद्रियों की विदाई लेते लेते फिर वापस भ्रुकुटी के पास आती है और वहां से चली जाती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उनके पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे एक एक इंद्रियों से विदाई लेती है वो अपना कनेक्शन तोड़ती जाती है और लास्ट पार्ट ये ठंडा होता है, क्योंकि वहां से फिर लास्ट में निकल जाती है। ये सारा दृश्य देखने के बाद उन्हें यही ज्ञान हुआ कि मैं भी आत्मा हूं। ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर छोड़ देती है, एक वस्त्र की तरह। जो गीता के अंदर आत्मा का ज्ञान दिया हुआ था वो सारा ज्ञान का एहसास हो गया, और जिसको भी देखते थे उसके प्रति यही भाव रहता था, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये शरीर तो खाली उनके वस्त्र है, मैं भी आत्मा हूं। इस प्रकार आत्मस्मृति उनकी जागृत हो गई। और फिर एक दिन शाम के समय जब बैठे हुए थे, ये अलग अलग जो अनुभव थे, दिव्य अनुभव, इन अनुभवों को जब स्मृति में ला रहे थे, उस समय उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, और विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होने के साथ एक ऐसा दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो उनको सबसे पहले साक्षात्कार में अनुभव हुआ था। सारे घर के अंदर एक ऐसा सन्नाटा सा था कि उस सन्नाटे में भी खींच थी। सारे परिवार वाले को मालूम तो था कि पिताश्री जी को दिव्य अनुभव हो रहे हैं, और इसलिए जैसे ही ये सन्नाटा महसूस हुआ घर के अंदर, सभी को लगा कि जरूर दादा के कमरे में कुछ हो रहा है। वहां चले गए तो फिर अर्ध पद्मासन लगा करके बैठे हुए थे और वो विष्णु चतुर्भुज के अलग अलग स्वरूप दिखाई दिए, श्रीनाथ का स्वरूप दिखाई दिया, इस प्रकार चार स्वरूप विष्णु के दिखाई दिए। और फिर एक आवाज सुनाई दी कि अहम चतुर्भुज ततत्वम। समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाहते हैं, और फिर वो दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो पहले साक्षात्कार में उन्हें अनुभव हुआ था, और फिर से वही अनुभव कि जैसे उनके शरीर में आए, प्रवेश किया और कुछ उच्चारण करके चले गए। और इस वक्त घर के सारे सदस्य के सामने ये दृश्य अनुभव हुआ, सारे घर के सदस्य बैठे थे और सभी के सामने ये प्रकाश की प्रवेशता हुई, और फिर कुछ उच्चारण हुए महावाक्य, फिर वो प्रकाश चला गया। पिताश्री जी जब उस साक्षात्कार के स्थिति से बाहर आते थे तो एक ही बात कहते थे कि वो कौन थी लाइट जो आई और चली गई। उस वक्त उन्हें पूछा कि आपने क्या देखा, तो कहा ऐसे लगा कि एक दिव्य लोक दिखाई दिया जो ये लोक नहीं था। परमधाम जैसा एक दिव्य लोक था जहां आत्माएं थी, जहां परमात्मा भी एक बीज की तरीके से थे और वो वहां से इस संसार में आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मेरे समीप आते हैं और मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। क्या होता है मुझे पता नहीं। ये अनुभव जैसे उनको होता था, ये था परमात्मा का परकाया प्रवेश। दोनों कार्य परमात्मा ने एक साथ साथ आरंभ किए थे। एक तरफ शंकर द्वारा प्रेरणा देकर के विनाश का कार्य, अणु शक्ति का निर्माण करने का कार्य, और एक तरफ ब्रह्मा द्वारा नए विश्व की स्थापना का कार्य संकल्प से। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में हुई, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा निमित्त बने, जिसको नाम दिया परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम क्यों मिला? ब्रह्मा नाम को अगर देखा जाए, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्म में निवास करने वाले, ब्रह्म महतत्व में निवास करने वाले परमात्मा इसमें है। ब्रह्मा वो ब्रह्म महतत्व से ये साकार तन में जब आते हैं, तब उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। और प्रजापिता के सारे प्रजा के बीच में उसको पिता के रूप में निमित्त बनाया कि जो सारे संसार का कल्याण कर सके। तो एक तरफ स्थापना की 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, छोटे से रूप में स्थापना हुई। हर रोज इस तरह की परमात्मा की प्रवेशता होती थी, कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण होते थे और चले जाती थी वो लाइट। धीरे धीरे घर के अंदर एक सत्संग आरंभ हुआ। बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिलती थी। पहले तो घर वाले ही बैठते थे, फिर अड़ोस पड़ोस वाले भी आने लगे कि रोज यहाँ सत्संग चलता है, चलो कुछ जाकर के सुनते हैं। अड़ोस पड़ोस के साथ साथ फिर धीरे धीरे हैदराबाद सिंध में जो उनके मित्र संबंधी थे वो भी आने लगे। इस तरह वो सत्संग बढ़ते बढ़ते 300-350 तक पहुंचा। जब वो मकान छोटा होने लगा, एक दूसरे स्थान पर उन्होंने यह सत्संग आरंभ किया जहां करीबन 1000-1200 लोग रोज आते थे। और रोज इस प्रकार की प्रवेशता होती थी, महावाक्य उच्चारण होते थे और परमात्मा चले जाते थे। ऐसा दिव्य ज्ञान जो पहले कभी नहीं सुना। और उस सत्संग की ये विशेषता थी कि जो भी उस सत्संग में आते थे, और पिताश्री ब्रह्मा बाबा ये ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे। ओम की ध्वनि जो लगती थी, और उस ओम की ध्वनि में, ओम के उच्चारण में जो भी आत्माओं की बुद्धि इधर उधर भटकती थी वो जैसे स्थिर हो जाती थी, और उन्हें भी कोई न कोई दिव्य साक्षात्कार होते थे। किसी को ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देता था, किसी को ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता था, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार होता था, किसी को महाविनाश का साक्षात्कार होता था। इस प्रकार हर रोज साक्षात्कार अवश्य होते थे। जो भी बैठते थे उस सत्संग में ओम की ध्वनि शुरू होती थी, और उस ओम की ध्वनि के साथ साथ कई लोग ट्रांस में चले जाते थे, साक्षात्कार में चले जाते थे, और ये साक्षात्कार होने लगा। तब समाज के अंदर एक आवाज फैल गया कि जो भी उस सत्संग में जाता है उन्हें सहज ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, विष्णु जी के दर्शन होते हैं। इसलिए ये सत्संग बहुत तीव्र गति से बढ़ता गया और इस सत्संग का नाम ही पड़ा ओम मंडली। पहले ब्रह्मा कुमारीज नाम नहीं था, पहले ओम मंडली के रूप में लोग उसको जानते थे, और जैसे ही ओम मंडली में जाते थे ये साक्षात्कार दिव्य अनुभव होते थे और सत्संग सुनते थे और उसके बाद आते थे। लेकिन कोई भी कार्य की शुरुआत जब होती है तो इसलिए कहा कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को कैसे रचा, तो परमात्मा ने उसको संकल्प दिया और उस संकल्प से संसार को भी वो संकल्प देते गए, जिससे हर आत्मा अपनी सृष्टि को बदलने लगा, अपनी सृष्टि को परिवर्तन करने लगा। हर इंसान की कर्मों की सृष्टि अपनी अपनी है। इसीलिए एक कहावत है कि आकाश में जितने तारे हैं, हर तारे में एक दुनिया है। वो तारों में दुनिया तो नहीं है, लेकिन आत्मा रूपी जो चैतन्य सितारा है, हर चैतन्य सितारे की कर्मों की सृष्टि अपनी अपनी है, और ये कर्मों की सृष्टि को परिवर्तन किया संकल्प के द्वारा। जो परमात्मा ने संकल्प दिया पर काया प्रवेश करके, और उससे अनेकों का जीवन परिवर्तन होने लगा। शुरू में ये बहुत तीव्र वेग से सत्संग चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है। और वो परीक्षाओं का सामना किस प्रकार आए, तो कई लोगों को ये लगा कि हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे, या पता नहीं ये साक्षात्कार कर रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं, मेस्मरिज्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कराने वाला तो परमात्मा था, लेकिन लोग तो ब्रह्मा बाबा को देखते थे और उस कारण से उसको ही यही समझते थे ये कोई जादू तो नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे विघ्न पड़ने लगे, जो भी आते थे उनको रोकने लगे कि आपको वहां नहीं जाना है। लेकिन जिसने एक अमृत का टेस्ट किया था वो उस अमृत को छोड़ भी नहीं सकते थे, और इसलिए काफी परेशानियां हुई, खूब लड़ाई झगड़े चलने लगे, घरों में से लोग रोकने लगे कि आपको वहां नहीं जाना है। लेकिन फिर भी जब लोग जाते थे तो घर गृहस्थ में झगड़े होने लगे। तब कई लोगों ने सोचा, समाज के कुछ मुख्य ठेकेदार इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा जड़ को ही खत्म कर दो, ब्रह्मा बाबा को ही खत्म कर दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इस प्रकार से प्लान बनाया और उस वक्त ढूंढा कि कौन ऐसा कोई नामी ग्रामी डाकू ही हो या खून करने वाला हो, उसको हायर करते। एक सरदार था जो बहुत खूंखार था उस समय में, क्योंकि उस समय तो पार्टीशन नहीं हुआ था, तो बहुत खूंखार था। उनके पास ये लोग गए, समाज के ठेकेदार, और कहा मुंह मांगी कीमत हम देंगे आपको, एक व्यक्ति को खत्म करना है। कौन व्यक्ति है, तो कहा दादा लेखराज जो है उसको खत्म कर देना है। कहा ठीक है, उन्होंने समझा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, एक व्यक्ति को ही खत्म करना है और मुंह मांगी कीमत मिल रही है। वो मारने के लिए गए और जैसे ही गए तो किसी ने दरवाजे पर रोका, किसको मिलना है। कहा ये दादा जो यहां रहता है ना, उनके साथ कुछ प्रश्न उत्तर करना है, इसलिए मिलना चाहता। दोपहर के समय में गए थे तो वो पहरेदार जो थे उन्होंने कहा कि इस वक्त वो आराम में है, आप शाम को आइए। कहा नहीं, मैं शाम तक नहीं रुक सकता, मुझे अभी मिलना है। उसने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, दोपहर में सब आराम में होंगे तो उस वक्त खत्म करना भी मेरे लिए सहज हो जाएगा। ये सोच करके जब बहुत जिद किया, आवाज बढ़ने लगी आर्ग्यूमेंट की, पिताश्री जी ने अपने कमरे की खिड़की से जब देखा कि कोई आया है और बहसबाजी चल रही है, तब तब फिर अंदर से संदेश भेजा, उसको आने दो, जो मिलना चाहता है उसको आने दो। फिर उनको छोड़ा गया, कमरे में गए, पहले तो ज्ञान की कुछ चर्चाएं चलती रही। ज्ञान की चर्चा के साथ साथ फिर जब उन्होंने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, अभी आसपास कोई नहीं है और अब सहज खत्म कर सकता हूं, उसने अपना छुरा निकाला मारने के लिए। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जो परमात्मा का रथ था उसको कोई मार नहीं सकता था। उस सरदार जी को गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा में उन्होंने गुरु नानक देव को देखा, पीछे हट गए कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। जैसे पीछे हटे फिर उन्हें ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, फिर से मारने के लिए हाथ उठाया, दोबारा उन्हें गुरु नानक देव के दर्शन हुए, वही चरणों में गिर गए और कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे समाज के ठेकेदारों ने भेजा था मुंह मांगी कीमत दे करके कि तुम जाकर के बाबा को खत्म करके आओ। मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई, मुझे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ, आप जैसे महान आत्माओं को मैं कैसे इस संसार में ये कर्तव्य करके खत्म, आप तो ईश्वर के पैगंबर हो। और इस तरह से वही चरणों में गिर करके बहुत झार झार रोने लगे और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत। और उस दिन से उनका जीवन बदल गया, वो खून करने का धंधा ही उसने छोड़ दिया, चाकू समर्पित कर दिया कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कर्म नहीं करूंगा। बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया और प्रसाद देकर के उसको कहा, तुम रोज आते जाओ, ज्ञान सुनते जाओ। इस प्रकार कई रीति से खत्म करने के प्रयास किए गए। फिर जब समाज के ठेकेदारों ने देखा कि ये कार्य तो हुआ नहीं, वो ही बदल गया और वहां जाने लग गया, तब उन्होंने सोचा कि जब इनका सत्संग चलता है सुबह सुबह में, सारे लोग बैठे होते हैं, अपने परिवार के लोग भी भले बैठे होते हैं, लेकिन उसी वक्त बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाए और ये मकान को ही आग लगाया जाए, मकान को ही भस्म कर दिया जाए, ताकि भले अपने मित्र संबंधी भी खत्म हो जाए लेकिन सत्संग तो बंद हो जाएगा। इस प्रकार एक सुबह सुबह उन्होंने निश्चित किया कि आज सुबह जाकर के इनका सत्संग जब 6:30 बजे आरंभ होता है, उसी वक्त मकान को आग लगा दिया जाए। ये सोच करके ये सारा प्लानिंग किया, लेकिन ईश्वर जहां रखवाला होता है वहां कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उसी दिन सुबह सुबह जब मेडिटेशन हुआ, मेडिटेशन के बाद पिताश्री जी को मन में आया कि आज समुद्र तट पर चलते हैं। कराची में थे उस वक्त, क्योंकि हैदराबाद का जब मकान छोटा हो गया, कराची शिफ्ट हुए, तो कराची में समुद्र किनारे पर, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आज समुद्र तट पर जाएंगे, वहां ज्ञान की बातें सुनेंगे। एक तरफ परमात्मा ज्ञान सागर अपनी ज्ञान की बातें सुनाएगा, एक तरफ स्थूल सागर के किनारे कैसे सागर की लहरें होती है उसका अनुभव भी करेंगे। सुबह सुबह 6 बजे में वो निकल चले, समुद्र किनारे चले गए। यहाँ ये लोग जब आए, सोचा मकान के अंदर बैठे होंगे, बाहर से कुंडा लगा दिया और चारों तरफ पेट्रोल आदि डाल करके मकान को आग लगा दी। जैसे ही मकान जल रहा था कि 7:30 बजे समुद्र किनारे से ये पूरी पलटन आई, दिखा सभी ने, अरे ये बाहर कैसे निकले। सब शांति में खड़े थे, बाबा ने सबको कह दिया था कि कोई कुछ नहीं कहेगा, देखते जाओ। और इस तरह से जब मकान आग लग रहा था, सभी को आश्चर्य हुआ ये लोग बाहर कैसे आए, पता ही नहीं था कि ये लोग तो पहले से ही निकल गए थे। उस मकान का नाम था लखी भुवन, दादा लेखराज के नाम से था लखी भुवन, जो शास्त्रों में गायन आता है कि पांडवों को लाखा भवन में आग लगाई। पांडव अर्थात जिसकी परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि है, जो परमात्मा के साथ प्रीत रखने वाले जब उस लखी भवन में रहते थे तो लाखा भवन को आग लगाई, जिसका यादगार शास्त्रों में दिखाया। लेकिन जब भगवान साथ होता है तो कैसे वहां से भी बाहर निकल आते हैं। इस तरह अनेक सितमों को सहन किया और अनेक सितमों को सहन करते करते जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय काफी लोग वहां से निकल चले और भाग चले। बाबा वहीं पर रहे, उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल खोली थी, जिन बोर्डिंग स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ये आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ लौकिक विद्या भी सिखाई जाती थी। 350 बच्चे थे और 350 बच्चे वहीं रहते थे हॉस्टल में, और हॉस्टल में रह करके वहां ये आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण भी करते थे तो अपनी लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते थे। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, सब लोग भाग गए, तो जिन्हों के बच्चे थे उस हॉस्टल में, वो माँ बाप बच्चों को लेने तक नहीं आए और चले गए छोड़ करके। उस वक्त बाबा ने सब बच्चों को यही कहा, हमको यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। और कलेक्टर से बात की कि हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे, हमारे साथ 350 बच्चे हैं। कलेक्टर ने हर रीति से प्रोटेक्शन दिया, इतना सहयोग दिया कि नहीं आप ये, क्योंकि आवाज तो सुनते ही थे किस प्रकार के सितम उनके ऊपर आ रहे हैं और कैसे कैसे सितम पर भी वो सब बातों में हमेशा बच जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर पाता था। तो यही महसूस होता था कि जैसे ये इनके साथ कोई अल्लाह की शक्ति है और अल्लाह की शक्ति से ही ये लोग चल रहे हैं, और इसलिए यही सोचते थे ये पाक कर्तव्य करते हैं, इनको हमें सहयोग देना है। और इस तरह से सब रीति से सहयोग दिया, अनाज पानी सब्जी सब कुछ घर पहुंच जाता था, बाहर निकलने के लिए उनको मनाई कर दिया गया। और वहां पर 14 साल तक रहे, 14 साल का वनवास कहा जाता है। तो इस तरह से 14 साल तक वहां रहे। 14 साल के बाद परमात्मा का संदेश मिलता है कि अब जाकर के भारत के अंदर ये आत्मा की ज्योति जगाओ, भारत जाना है। लेकिन कहां जाना है ये कोई स्पष्टीकरण नहीं था, सिर्फ यही कहा भारत में एक पहाड़ी पर जाना है जो एक आध्यात्मिक पहाड़ी है। अब भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है, कहां आती है, कुछ भी नहीं पता। कुछ मुख्य भाई बहने 5-6 का ग्रुप भारत में आया, अलग अलग स्थानों पर गए और अलग अलग स्थानों पर जाकर के सबसे यही पूछते रहे भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है। हिमालय के तरफ गए, कई पहाड़ियां गए, किसी को पता नहीं। फिर एक बार एक कोई महात्मा थे जो अपना एक आश्रम चलाते थे बॉम्बे में, उनके पास गए कि शायद इनको पता होगा कि भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है। उनको जाकर के पूछा कि भारत की आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है, आपको पता है। तब उन्होंने कहा आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि माउंट आबू जो है वहां सारे स्थान आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर के है। फिर उसने बताया कि माउंट आबू जो है इसको कहते ही है अर्बुदा, अर्बुदा की पहाड़ी, और ये अर्बुदा जो नाम है ये सरस्वती का दूसरा नाम है। और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान इस पहाड़ी पर दिया है, और कहते हैं कि पांडवों की अंतिम तपस्या भी अरावली की पहाड़ियों में पूरी हुई थी, और इसलिए वहां जितने भी स्थान है, गुरु शिखर चले जाओ जहां दत्तात्रेय का मंदिर है सती अनसुईया जी, वहां पर तपस्या अत्र ऋषि ने वहां पर तपस्या की हुई है, और दिलवाड़ा का मंदिर है जहां पर दिलवाला परमात्मा की यादगार है, अधर देवी का मंदिर है, यानी वहां कोई भी स्पॉट साइट सीइंग स्पॉट नहीं होता है, खाली एक सनसेट के सिवाय सारे स्पॉट आध्यात्मिक रहस्यों से भरपूर है। इसलिए शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, आप वहां जाकर के देख लो। जैसे ही वहां पर पहुंचे माउंट आबू में, ऐसा लगा कि सचमुच वही भूमि हमें पुकार रही है। पिताश्री जी को इन्फॉर्म किया, बाबा ने कहा बस यही भूमि, आप एक स्थान देखो, हम 350 को लेकर के आ रहे हैं। 350 बच्चों को लेकर के जब माउंट आबू पहुंचे, ओखा बंदर उतरे और यहां से फिर माउंट आबू गए। माउंट आबू जाने के बाद भरतपुर राजा की कोठी थी, जो कोठी में इतनी बड़ी कोठी थी, राजा का महल था भरतपुर राजा का, इसलिए 350 को एकोमोडेट करना बहुत सहज हो गया। और इस तरह से वहां पर जब एक दो साल रहे कि भारत में जिनके माँ बाप आ गए थे उनको पता चला कि बाबा हमारे बच्चों को लेकर के सुरक्षित रीति से भारत में आ गए। जब पाकिस्तान को छोड़ा, उस वक्त भी सभी मुसलमान लोग जब छोड़ने आए थे वहां कराची के बंदर पर, और जहाज में बैठ करके ओखा बंदर आना था उनको, उस वक्त भी मुसलमानों ने यही कहा कि ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गए जो आप ये भूमि छोड़ करके जा रहे हो। बाबा ने कहा कोई गलती नहीं हुई, लेकिन एक ईश्वरीय पैगाम है जिसको पूरा करने के लिए जाना है कि भारत में भी अभी आत्म ज्योति जगानी है। तब वहां के एक मुसलमान जो धर्म गुरु था उनका, उसने कहा आप ये भूमि पर पाक कर्तव्य कर रहे थे, इसलिए ये भूमि बहुत सुरक्षित थी, अब आप ये भूमि को छोड़कर जा रहे हो तो ये भूमि पर नापाक कर्तव्य शुरू होंगे। और इस तरह के उनके शब्द थे। बाबा ने कहा जहां अल्लाह की मेहरबानी हो वहां नापाक कर्तव्य नहीं हो सकता है। कहा नहीं, यही दिन मैं देख रहा हूं कि इस भूमि पर नापाक कर्तव्य शुरू होंगे, और कुछ नहीं कह सकता हूं मैं, आपको एक खुदा का संदेश है, इसलिए आप भले जाओ। हर रीति से मदद की सब मुसलमानों ने। और फिर यहां पर जब बाबा आए तो माउंट आबू में रहे, फिर रिश्तेदारों को जब पता चला कि हमारे बच्चे आ गए तो सब अपने बच्चों को डिमांड करने आए कि अब हमारे बच्चे हमें वापस लौटाओ। बाबा ने कहा ले जाइए, लेकिन जो बच्चे 14 साल बाबा के साथ रहे हो, बाबा की पालना में रहे हो, माँ बाप तो छोड़ करके भाग चले थे, वो बच्चे जाएंगे? उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, जब वो बुला रहे हैं तो आप जाइए, लेकिन आप एक बात याद रखना कि हम घर में नहीं जा रहे, लेकिन जो 14 साल ईश्वरीय ज्ञान को हमने सुना है, जीवन में उसको धारण किया है, वो सबके साथ बांटने जा रहे हैं। तब वो बच्चों ने कहा हम एक महीने के लिए खाली जाएंगे, एक महीने के बाद वापस आ जाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है, एक महीना जाओ। सब बच्चों को बॉम्बे, दिल्ली, फिर अमृतसर और लखनऊ, ये चार जगह पर कुछ एक रिश्तेदार थे, बाबा ने उनके पास भेजा। वहां जाकर के सबने एक ही प्रकार की अपनी दिनचर्या रखी, जो बातें यहाँ सिखाई गई थी, जो यहाँ जीवन था, उसी अनुसार वो अपने घर में जीने लगे। सुबह उठना, मेडिटेशन करना, ज्ञान की बातें सुनाना सबको, और इस तरह से एक सत्संग शुरू हुआ। एक महीने के बाद जब उन्होंने कहा हम वापस जाते हैं, तब रिश्तेदारों ने कहा आप चले जाएंगे तो हमको ज्ञान कौन सुनाएगा? तब वो बहनों ने कहा कि वो तो बाबा से अब बात करो, हम क्या जाने। फिर वो वापस बाबा के पास गए और पूछा कि बाबा ये तो वापस आने के लिए कहते हैं, अगर चले जाएंगे तो इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हमें कौन सुनाएगा। बाबा ने कहा ठीक है, वो भले रहे वहां पर लेकिन आपके घर में नहीं रहेंगे, एक मकान उनको लेकर के दे दो जहां पर वो रहे भी, ये ज्ञान की बातें भी सुनाए, ताकि और धर्म के लोग भी वहां आए और आत्माएं भी समाज से आए जिनका भी आध्यात्मिक कल्याण हो, जिनकी भी आत्म उन्नति हो, ऐसा श्रवण वहां पर प्राप्त करें। तो इस प्रकार सबसे पहले सेंटर्स जो हमारे खुले दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ और अमृतसर में मुख्य रूप से ये चार सेंटर सबसे पहले खुले, और इस तरह से अनेक स्थानों पर सेंटर्स खुलते गए। कहने का भावार्थ, एक तरफ परमात्मा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाकर के संकल्प दिया 1936 में, और दूसरी ओर विनाश का कार्य भी जो आरंभ कराया शंकर के द्वारा प्रेरणा से, वो भी 1936 में, दोनों कार्य साथ साथ आरंभ हुए। क्योंकि पहला बम जो गिरा हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में, तो ये बम बनने की प्रेरणा कब से मिली होगी? 45 में जब उसका पहला प्रयोग हुआ तो उसकी प्रेरणा 36, 10 साल तो लगे होंगे उस बम को बनाने में, तो 35-36 में ये बम की पहली शुरुआत हुई। तो एक तरफ विनाश का कार्य आरंभ किया, दूसरी ओर स्थापना का कार्य आरंभ किया। कई लोग पूछते हैं अब कितना समय बाकी है, विनाश की तैयारियों को देखते हुए तो लगता है जब बटन दबाने की देरी तक सब कुछ पहुंच गया है तो अब स्थापना की कितनी देरी होगी। अब ज्यादा नहीं समय रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी आकर के बची है। अब जिस आत्मा को अपना कल्याण करना है, क्योंकि समय परिवर्तित होने जा रहा है, और उस समय में अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम कंस्ट्रक्शन के निमित्त बने, अर्थात परमात्मा ने जो स्थापना का कार्य शुरू किया है उसके तरफ जाए, या हम डिस्ट्रक्शन के निमित्त बने। किस ओर जाना है ये अपने ऊपर है, या हम समस्या स्वरूप बने या हम समाधान स्वरूप बने, ये अपने ऊपर है कि डिस्ट्रक्शन के तरफ जाना है या स्थापना के कार्य अर्थ अपने जीवन को बनाना है। तो इसके आधार पर अब हमें अपने आप में फैसला करना होगा। तब कहा परमात्मा का जो दिव्य कार्य चल रहा है, उस दिव्य कार्य के सहभागी बनना है या विनाश के शिकार बनना है, किस ओर जाना है ये अपने हाथ में है। ये है परमात्मा का दिव्य कर्तव्य का एक स्वरूप जो आपको स्पष्ट किया। कई बातें थी, शॉर्टकट में काफी बातें सुना दी, बाकी डिटेल में तो आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापना कैसे हुई वो पुस्तक भी है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और डिटेल में सारी बातें भी समझ सकते हैं। तो ये था ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर उसकी पालना विष्णु द्वारा स्वर्ग में होती है श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में, और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य भी आरंभ हो चुका है और अब समाप्ति की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।